Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में जिस व्यक्ति की जितनी कम शिकायतें होंगी उतना ही वो ज़्यादा खुश रहेगा। ज़िंदगी को लेकर के हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी परफेक्ट हो, पर कई बार हम ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो ज़िंदगी ने हमें पहले से दी हैं। तो हर चीज़ का वैल्यू कीजिए और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि आपकी जो लाइफ है वो एक्चुअली में अभी ही परफेक्ट है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी।
थैंक्स अ लॉट
डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे हैं जिंदगी की। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, जिसके अंदर में कहीं ना कहीं जो असली महत्व, जो असली इम्पोर्टेंस है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं खोसा जाता है। ऐसे में हमारे वैल्यूज़ हमारे काम आते हैं, हमारी जो ज़िंदगी से सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो हमें मदद करती हैं आगे बढ़ने में। ऐसे में कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसकी ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए?
देखिए, हम कई बार भूल जाते हैं कि अगर जीवन को एक वृक्ष की भांति देखें तो बाद में पेड़ कितना बड़ा होगा, कितने फल देगा और किस तरह की सेवा करेगा
जी,
इसका जो सीड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
True.
क्योंकि अगर सीड अच्छा है और उसके बाद उसको सही नर्चरेंस मिले, खाद, पानी, हवा, तो वो अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो जीवन को भी अगर हम देखें तो जो शुरू की वैल्यूज़ हैं, जो बचपन की वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअली परिवार से शुरू होती है, उसके बाद साथ परिवार का जो आसपास का दायरा है, रिलेटिव्स हैं, फिर स्कूल है, फिर कॉलेज है, फिर जब एक नया परिवार बनता है, तो इन सब में जो बचपन में वैल्यूज़ डाली गई, वैल्यूज़ को अगर हम इंग्लिश वर्ड है उसको समझें कि मूल्य, तो किसी चीज़ का मूल्य तभी बढ़ता है अगर उसमें कोई ख़ास चीज़ हो। लोहा भी एक धातु है और सोना भी एक धातु है, लेकिन क्योंकि सोने की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है इसलिए उस वो ज़्यादा बिकता है। तो उसी प्रकार से, और ये नहीं है कि लोहे की वैल्यू नहीं है, लोहे की भी वैल्यू है अपने एक अलग प्रकार से। तो बचपन में हम अब इतने खो गए हैं पढ़ाई में, अच्छे स्कूल को डालने में, उनको कई तरह की हॉबीज सिखाने में, कि जो कोर चीज़ है जिसकी वजह से उसने पूरे जीवन में किस रूप से जीवन को जीना है और देखना है, उसको देना हम भूल जाते हैं। क्योंकि वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किताबों में से पढ़ के नहीं पा सकते। उसके लिए सिखाने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो आप खेल खेल में सीख सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस चीज़ में जाके मेरे जीवन में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ किसी रूप में मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा और वो यूज़ करने से मुझे जो बाकी चीज़ें हैं उनमें फ़ायदा होगा,
बिल्कुल,
इनको हम कोर स्किल्स बोलते हैं। कोर स्किल्स का मतलब यह है कि अगर आपने ये चीज़ समझ ली और सीख ली तो वो किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
ओके।
जैसे एक स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो साइकिल के भी पेज को खोल सकता है और हवाई जहाज़ के पेज को भी खोल सकता है। तो वही वैल्यूज़ अगर हम जीवन में बच्चों में डालना शुरू कर दें, डाली तो किसी भी एज पे जा सकती हैं, लेकिन अगर वो बाद में डलती हैं तो उसकी वजह से जो पहले की वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता, वो एक ज्यादा लंबा प्रोसेस है, कठिन प्रोसेस है।
करेक्ट, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है।
कंडीशनिंग हो चुकी है और प्रैक्टिस भी हो चुकी है।
करेक्ट,
उसने बार बार उस चीज को एक अलग रूप में प्रैक्टिस किया और वो फिर जैसे आप कह रही हैं कि वही कंडीशनिंग बार बार होती रहती है, और उसके लिए फिर पहले उसको समझना पड़ेगा कि क्यों बदलना चाहते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे जैसे कोई लैंग्वेज होती है ना, वो बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, और अगर आपको बाद में सीखनी पड़े तो बहुत मुश्किल होती है। बचपन की वैल्यूज जो हैं सिंपलर वैल्यूज हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब ऑनेस्टी का मतलब क्या है ये सिखाना बचपन के कॉन्टेक्स्ट से ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, उसमें समानता हो, साफ सफाई हो, आपका अंदर का और बाहर का जो चित्रण है वो अच्छा हो। उसी के साथ साथ दूसरों को रिस्पेक्ट देना, और उसमें हम कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चे को भी रिस्पेक्ट उतनी ज़रूरी है।
जी।
बच्चे से हम किस भाषा में बोलते हैं वो डिसाइड करता है कि वो बाद में बड़ा होके दूसरों से क्या भाषा यूज करेगा। हम कई बार उन्हें एक बहुत छोटी सी गुड़िया मान लेते हैं जिसको हम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं या कह सकते हैं, तो उन्हें वो जो रिस्पेक्ट अगर मिलती है तो उनको पता लगता है कि ये रिस्पेक्ट देना और लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अपनी बात को कह पाना।
बिल्कुल, क्योंकि एज अ पेरेंट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है कि वो खुद किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी पिकअप कर लेते हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ अब्यूसिव वे में बात की जाती है घर में, कुछ सेकेंड्स के अंदर ही बच्चा वो चीज़ बोल रहा होता है और फिर हम उसे डांट देते हैं कि ऐसी बातें मत बोलो। पर रियलिटी तो ये है कि आपने खुद ने ऐसी बात की थी जिस वजह से बच्चे ने ऐसा सीख लिया।
जी।
तो हमें खुद एज अ रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है, तभी ही हम वैल्यूज उन तक इनकलकेट कर पाएंगे।
वैल्यूज को सिखाने में खुद हम उनको कितना इनकलकेट करते हैं और किस प्रकार से यूज करते हैं
जी,
वही बात दूसरे को समझ आती है। वैल्यूज के बारे में नॉलेज ली जा सकती है, लेकिन वो लिखित या सुनने वाले जो है वो आगे तक नहीं जाते जब तक उसे कॉन्स्टेंटली सिचुएशंस में यूज ना किया जाए। और आज के समय में एक्चुअली जो चीज़ें बच्चा सीखता है वो चीज़ें सिर्फ परिवार से नहीं सीखता, वो चीज़ें टेलीविज़न से भी उतनी सीखता है। और कई बार ये देखा गया है कि टेलीविज़न का रोल जो है वो माँ बाप के रोल से भी ज़्यादा हो जाता है
जी।
और कई बार पेरेंट्स बहुत हताश हो जाते हैं कि हम तो उसे अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं पर इससे उसको कुछ और ही सीखने को मिल रहा है, या जब वो थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल में जाता है तो दूसरे बच्चे उस समय क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से जीवन को जीने की बातें सीख रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो फैमिली का कंट्रोल ये है कि वो अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करें और चेंज करें अगर ज़रूरी पड़ती है। सेल्फ एस्टीम या सुमान वो एक ऐसी वैल्यू है जो इसी समय, मैं तो कहूँगा जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से, क्योंकि उसका अपने बारे में जो एक मन में स्वरूप बनता है उस स्वरूप में अपने आप को वो सक्षम महसूस करता है या नहीं, उस स्वरूप में वो हर सिचुएशन से डील करने में अपने आप को पूरा पाता है या नहीं, उसे अपने बारे में कैसा महसूस होता है, क्या वो शाही महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ, उतना सुंदर नहीं हूँ, उतना स्मार्ट नहीं हूँ, जितना भी
जी।
और वहाँ पर कई बार मुश्किलें आती है कि कुछ शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए वो शब्द उसके मन में घर कर जाते हैं।
बिल्कुल।
और नेगेटिव शब्द ज़्यादा घर कर जाते हैं मोर देन पॉजिटिव। तो अगर आपने कहा कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते तो उसके मन में अपनी अब छवि बननी शुरू हो जाती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए उसने कुछ ट्राई किया और नहीं भी कर पाया, लेकिन हमने इनकरेज किया कि तुमने ट्राई तो किया, नेक्स्ट टाइम इस रूप से ट्राई करेंगे, तो अब समझ जाता है कि हर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे हिसाब से नहीं हुई लेकिन उसको करने के और तरीके हैं, सक्सेस को पाने के और तरीके हैं, तो वो उस रूप से फिर सोचना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ कोऑपरेशन, हम बच्चों को कंपटीशन बहुत सिखा रहे हैं कि तुमने क्लास में सबसे आगे आना। अब मैं इस गणित को कभी नहीं समझ पाया हूँ कि सारे बच्चे फर्स्ट कैसे आ सकते हैं पर हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट आए।
सोचो,
बच्चा भी ये चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, और उसमें ये भी नहीं कि अच्छा तुम एक सब्जेक्ट में फर्स्ट आ जाओ, तुम ओवरऑल बेस्ट रहो।
करेक्ट।
और अनफॉर्चुनेटली अब वो ओवरऑल जो है वो ओवरऑल सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, गेम्स के मामले में भी, कई पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका चहुं ओर से विकास हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको एक नई चीज को सीखने के रूप में, आप अच्छा स्पोर्ट्समैन, अच्छा पढ़ने वाला, वेल मैनर्ड, बहुत सुंदर दिखने वाला, ऐसे ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन समाज अब ये जो है वो हर चीज़ पे एक प्रीमियम लगाता है, और फिर बच्चे को ये लगने लगता है, और ये वैल्यूज़ कुछ हैं जो कि वो पिकअप कर रहा है, शब्दों को भी शायद व्यक्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए, लेकिन वो पिकअप कर रहा है कि मैं जब कोई चीज़ इस प्रकार से करूँगा जिस प्रकार से कि दूसरों को पसंद आएंगी, तो मैं गुड बेबी हूँ या बैड बेबी हूँ, वो दोनों चीज़ें तोलता रहता। इसी के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें, कम्युनिकेशन एक वैल्यू है कि हम किस प्रकार से खुद को सम्मान में रखकर दूसरे को सम्मान दे सकें। अब दूसरे को सम्मान आप तभी दे पाएंगे अगर आप अपने आप में पूरक होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब गुण हैं तो आप दूसरों को वो गुण दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप खाली हाथ से किसी को कुछ नहीं दे सकते। सो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनको ये बात दिखाना, समझाना नहीं सिर्फ दिखाना, कि आप किस तरह से हर समय चाहें तो दूसरों की मदद कर सकते हैं और उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से अपनी बात को कह देना है लेकिन दूसरे को हर्ट नहीं करना, वो सॉफ्टनेस एक अलग वैल्यू है जो कि बचपन में बहुत बखूबी सिखाई जा सकती है, क्योंकि उस समय में बच्चा जो है वो खुद भी चाहता है कि दूसरे उसके दोस्त बने, उससे उसकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बेटर होती है। लेकिन किस प्रकार से वो दूसरों को ये फीलिंग दे सकता है तभी दूसरे उसको पसंद करेंगे। और वहाँ पे कई बार पेरेंट्स दूसरा मैसेज दे देते हैं कि अगर तुमसे किसी ने अच्छा नहीं बोला कल से उससे बात नहीं करना। उसको नेगोशिएट कैसे करना है ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी हो जाता है, और धीरे धीरे यही चीज़ अब स्कूल्स महसूस कर रहे हैं कि हमने शायद इंटेलेक्चुअली बेहतर स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं वो बनाने तो शुरू कर दिए, लेकिन उनमें सक्षमता भरना, उनमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, उनमें अपने में सम्मान रखना और दूसरों को दे पाना, इसकी कमी आती जा रही है।
पर डॉक्टर साहब, वैल्यू एजुकेशन की बात करें हम, स्कूल्स में दिस इज एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इसे इंट्रोड्यूस करा जा चुका है ऑलरेडी। बहुत सारी बातें होती हैं जो उसमें बच्चे सीख रहे होते हैं, लेकिन वो बुकिश लैंग्वेज होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है ये सिखाना मुश्किल होता जा रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर वैल्यू एजुकेशन को लाइफ में लाना है तो कोई ऐसा तरीका है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं?
कि ब्रह्म कुमारीज के द्वारा जहाँ तक मुझे मालूम है कि बहुत सशक्त प्रोग्राम वैल्यूज़ इन एजुकेशन नाम से, जो कि हर क्लास के लिए अलग अलग है। बहुत छोटा बच्चा जो है जो 5 साल तक का है, उसके बाद जो अर्ली स्कूलिंग है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रास्प करने की शक्ति बदल जाती है। बहुत छोटे बच्चे को आप कहानियों के द्वारा ही शायद चीज़ें समझा पाएंगे क्योंकि वो करेक्टर्स के साथ
रिलेट कर पाते हैं।
तो और थोड़ा सा बच्चा है, अगर उसके वो आप सिर्फ कहानियाँ सुनाएंगे तो उसे नहीं समझ आएगा, उसको थोड़ी सी रियल लाइफ सिचुएशंस बतानी पड़ेंगी, और कई बार वो जो है वो उससे ही जाननी पड़ेंगी या उसको ऑल्टरनेट्स देने पड़ेंगे। तो वैल्यूज़ इन एजुकेशन जो है वो एक ऐसा सशक्त कार्यक्रम है जो कि किसी भी बैकग्राउंड के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है, उसको वहाँ पे फिट किया जा सकता है। स्कूल्स जो हैं वो चाहें तो उसको एज अ करिकुलम पढ़ा सकते हैं या एज अ लिव्ड रियलिटी जिसको कहते हैं कि कैसे उसको जिया जाए
जी।
इसके बारे में बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, और ये तो स्कूल तक ही सीमित नहीं है, उसको अगर आगे चाहें तो वो कॉलेज में भी ला सकते हैं। पर जैसा आपने कहा कि वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये बात नहीं है
करेक्ट।
कि वैल्यूज एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा पढ़ाई की तो परसेंटेज अच्छी आ गई, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने पे लगाने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता, क्योंकि शायद उसके पास वो रोल मॉडल्स उस समय नहीं है। वैसे टीचर जो क्लास में भी पढ़ाएं लेकिन अपने जीवन को भी वैसा जिए, या वैसे पेरेंट्स या समाज में जिन लोगों को वो देखता है, वहाँ पर कई बार उनके मन में दुविधाएं आनी शुरू होती कि जो मैंने ऑनेस्टी के बारे में पढ़ा और जो मैंने आसपास से सुना वो सिर्फ अच्छी बातें थी लेकिन अच्छा जीने का तरीका नहीं था।
Correct.
तो वो कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए भी हमें समाज में कुछ ऐसे सशक्त लोगों की ज़रूरत है। बट बाय एंड लार्ज व्हाट वी आर नाउ फाइंडिंग इसकी यूथ कई प्रकार से इन चीज़ों को अपने अंदर महसूस भी करता है, बदलना भी चाहता है, लेकिन इस चीज़ के संवाद नहीं होते। इस चीज़ के बारे में बैठ के अगर एक डिस्कशन हो, बातचीत हो, पॉसिबिलिटीज़ हो, किस प्रकार से हम अपने आप को बदल सकते हो, ये हो, और उसको पा लेने के तरीके, और वहाँ पे आई वुड से कि मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो इन चीज़ों का चिंतन करके उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है, और प्रैक्टिकली भी ऐसा पाया गया है कि ये हो सकता है इन व्हाटएवर स्कूल्स और व्हाटएवर बैकग्राउंड्स। ये पाया गया है कि जो बच्चे अपने में कॉन्फिडेंट हैं
जी,
अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उसको संभाल पाने में, जिसको कि रेजिलियंस कहते हैं, कि अगर कोई चीज़ बाहरी रूप से ठीक नहीं हुई लेकिन मैं उसका मीनिंग क्या लेता हूँ, मैं किस प्रकार से एक नए रूप से उसको सोच सकता हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर उसे बचपन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो बच्चे उन्हें इजीली ग्रास्प कर पाएंगे और फिर एक सशक्त इंसान बन पाएंगे
जी।
डॉक्टर साहब कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं।
बिल्कुल।
मेरा नाम हर्षविंदर कौर बल है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन है तो उसमें मुझे फर्स्ट आना है, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो मुझे क्या करना चाहिए।
मेरा नाम भाविका शर्मा, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं हमेशा सब कुछ याद करके जाती हूँ बट एग्ज़ाम के टाइम मेरा मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैं टीचर को भी रिविजन्स में अच्छा सुनाती हूँ बट मार्क्स बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम में।
डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता जा रहा है, इन्हें ऐसा लगता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्स्ट आए, ये प्रेशर उस पर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो स्ट्रेसफुल बिहेव करने लग गई है। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके वो जाती हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बिफोर द एग्ज़ाम, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और इन दोनों सवालों में कहीं ना कहीं बच्चों की कंफ्यूजन नज़र आ रही है
जी,
क्या किया जाए?
देखिए कंपटीशन हमारा कोर वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंपटीशन स्पेशली जिसको माइंडलेस कंपटीशन कहते हैं और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो कंपटीशन हमें तंग करता है
जी।
वैल्यूज़ का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपने अंदर अपने आप को सशक्त और रिलैक्स्ड महसूस करें, ताकि फिजिकली और मेंटली जो हम जीवन में कर सकते हैं वो बेस्ट परफॉर्म करें। कंपटीशन में आप सिर्फ अपने बारे में नहीं और सबके बारे में सोच रहे हैं, कौन कितना आगे निकला ये तो पता ही नहीं, उसने जो प्रोजेक्ट किया उसे हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी के थोड़े से बेटर मार्क्स आ गए तो हमको ये लगता है कि जैसे जीवन ख़त्म हो गया, या उसके लिए प्रेशर अब इतना बढ़ जाता है कि अगली बार मुझे ज़्यादा लेके आने। वहाँ पे एक बात जो कि बहुत क्लियरली दिखती है कि आपने स्कूल में बाय एंड लार्ज अगर ठीक ठाक किया है तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर स्तर पर आप दूसरों से आगे रहें। वहाँ पे द सो कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स, कि हम अपने अंदर कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम चीज़ों को कितने नए रूप से देख पाते हैं, हम कितने क्रिएटिव हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कैसे कर पाते हैं और जीवन की सच्चाइयों को अपने तरीके से कैसे जी पाते हैं
जी।
तो इसलिए आप अच्छी पढ़ाई करें, आप जितना आपकी क्षमता है उतनी करें, लेकिन उसमें फंस ना जाएं।
Okay.
और ये सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है।
करेक्ट।
वो लोग जो इनको कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट आना है, आपने अपना सबसे बेस्ट देना। सिर्फ अगर इस मापदंड के साथ चलेंगे तो शायद फर्स्ट भी आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट आना है और उसके लिए और जीवन की हर चीज़ को रोक दें या टेंस हो जाएं, या जो दूसरा कोई फर्स्ट आया उसके साथ झगड़ा कर लें या उसे अपना दुश्मन मान लें, उसमें आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड एग्ज़ाम फोबिया जिसको कह सकते हैं, या एग्ज़ाम में पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो जाना, फोबिया में व्यक्ति उस चीज़ को अवॉइड करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है। पर अगर वही चीज़ बढ़ के एग्ज़ाम के समय तक पहुंच जाए तो कई बार लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। उसके कुछ मोटे मोटे कारण ये हैं कि आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं।
ओके।
तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। तो अगर आपकी बैटरी बहुत देर से यूज़ हो रही है सेल फोन की, तो जब क्रूशियल कॉल करनी है तो बैटरी डिस्चार्ज है, वही होता है। या आपने ये सोच के कि मुझे बस सिर्फ पढ़ना है और किसी चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपने दिमाग को थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं दिया, तो उस वजह से भी एंड पॉइंट तक आपका माइंड इतना थक चुका होता है, सैचुरेशन हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाता। तीसरा, अगर आप रिलैक्स नहीं है अंदर से, तो जो आपने पढ़ा है वो एक कड़ी के रूप में एग्ज़ाम वाले दिन नहीं आता। एग्ज़ाम परफॉर्म करने के लिए पहली ज़रूरत है कि आपने पढ़ा हो।
करेक्ट।
और जब आपने पढ़ा हो तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अटेंशन दी, कुछ देर तक कंसंट्रेट किया, उसे याद किया, और जब वो याद हो गया वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर उसको अगर आप दूसरी बार तीसरी बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मिड टर्म मेमोरी हो जाती है। और अगर पूरी तरीके से आपने उसको समझ लिया है, पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है।
ओके।
लेकिन मेमोरी तभी कारगर होती है अगर आप मेंटली रिलैक्स स्टेट में हैं, नहीं तो वो मेमोरी एकदम नीचे पुश हो जाती है। और कई बार ये भी होता है कि जाने से बिल्कुल पहले आपको अगर ये घबराहट हुई कि मैंने शायद पूरा नहीं पढ़ा, या आपको ये मन में है कि एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स क्या आएंगे और उस रिज़ल्ट की वजह से मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने की वजह से जितना कुछ भी है तो सही माइंड के अंदर, लेकिन वो नीचे तक दब जाता है। सो बेस्ट तरीका इसके लिए यही होता है कि पहला तो जिस समय एग्ज़ाम है उस समय अपने आप को बिठा के कुछ दिन तक प्रैक्टिस करें कि आपकी एनर्जीज उस समय कितनी अच्छी हैं। उसी के साथ साथ अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो एक बार 3 घंटे बैठ के क्या आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
जी।
अगर आप बैठ सकते हैं और याद कर सकते हैं तो पेपर को पढ़ें, पढ़ के क्या क्या उसके आंसर्स हैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं, लेकिन आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, और फिर उसको प्रायोरिटाइज कर लें।
ओके।
प्रायोरिटाइज में कि जो आपको बहुत अच्छा आता है उतना लिखें, लेकिन उतने ही समय दें जितना कि एप्रोप्रिएट है।
करेक्ट।
10% मार्क्स के लिए आपने 50% टाइम गवा दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। तो हर चीज़ को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, और ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस समय आप अगर सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, दूसरे ने कितने पन्ने यूज़ किए या वो कितनी स्पीड से लिख रहा है, अगर इस चीज़ को करेंगे तो घबरा जाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, या आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं और उसकी वजह से आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं, वो अगर सोचते रहेंगे तो फिर अगेन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी।
दिस इज़ सो ट्रू। एग्ज़ाम के वक्त में अगर किसी और बच्चे ने सप्लीमेंट मांग लिया, हम काउंट करते रहते हैं कितने सप्लीमेंट्स वो ले चुका है,
पर हो सकता है वो फिल्म की स्टोरी उसके अंदर लिख रहा हो, एग्ज़ाम के बारे में लिख ही ना रहा। तो आप उस समय जो कर सकते हैं सिर्फ आप अपने पे फोकस रखें
जी।
दूसरे आपके लिए उस समय एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए।
बिल्कुल।
एंड लास्टली बट प्रॉब्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपके एग्जाम आप अपने रूप में दे सकते हैं। उसके बाद किस टीचर ने देख के क्या मार्क्स दिए वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपने अच्छे कार्य को करने के ऊपर फोकस करें। रिजल्ट जो है, जो कि एक तरह से गीता में भी वही बात कही गई है पूरी ज़िंदगी के लिए, कि आप रिजल्ट्स पे फोकस ना करें, क्योंकि वो रिजल्ट्स की जो कामना है वो आपके कार्य में भी बाधक हो सकती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ज़िंदगी में वैल्यूज़ का बहुत महत्व है, और अगर बचपन से ही वो हमारे ज़िंदगी में डाल दिया जाए, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर का एक हिस्सा बन जाएंगे और उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
प्लेजर।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जिसका सारांश ये था कि ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैल्यू एजुकेशन वैसे तो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करा जा चुका है, ऑलरेडी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकली जो वो देखेंगे उस चीज़ को वो ज़्यादा अडेप्ट कर पाएंगे? तो एज अ पेरेंट या एज अ टीचर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यूज़ हैं जो कि बच्चे देख करके सीख पाएं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।